الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. اے لوگو, کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی, بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ بولو اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے. اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے, تو کہتے ہیں ہرگز نہیں, ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو, بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ. اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے, بہرے گونگے اندھے ہیں سو کچھ نہیں سمجھتے. اے ایمان والو, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو, اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو. بزرگان محترم, ان آیات میں اللہ تعالی نے مشرکانہ طور طریقوں کو غلط قرار دیا ہے. مشرکوں کی ایک عادت تھی کہ وہ بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے, اور جب ان سے پوچھا جاتا ایسا تم لوگ کیوں کرتے ہو, تو صاف کہتے اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ پر جھوٹ باندھتے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے اس بات کو آگے بڑھاتے. تو بہت سی چیزیں, بہت سے جانور جو اللہ نے خود حلال کیے ہیں उनको क्यों हराम करते हो? तुम्ही हलाल को हराम करने का या हराम को हलाल करने का कोई इख्तियार नहीं है। उलमा ने लिखा है, हलाल को हराम या हराम को हलाल करना अगर कोई जायज समझ कर करेगा तो काफिर हो जाएगा। ये सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह का हक है। खुद हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इख्तियार नहीं था। सूरह तहरीम में है, या अय्युहन नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल की आप क्यों हराम करते हो? तो उसका इख्तियार हमारे आका अलैहिस्सलाम को भी नहीं था, तो फिर किसको ये इख्तियार हो सकता है? इसलिए अल्लाह ताला आम खिताब फरमा रहे हैं, या अय्युहन नास से, लेकिन यहां कुफार और मुशरिकीन मुराद है, वही ये काम किया करते थे। ऐ लोगों, खाओ तुम उन चीजों में से जो जमीन में है, हलाल और पाकीजा चीजें जो जमीन में है, जमीन में चलते फिरते हैं या जमीन से वो चीजें उगती हैं, बहरहाल जो जमीनी चीजें हैं, जानवर वगैरह जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया है इसलिए कि वो पाक हैं, तो उनको खाया करो और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों के पीछे मत चलो। दरअसल शैतान ही पट्टी पड़ाता था कि इसको हराम समझो, इसको हलाल समझो, ये तरीका हराम है, ये तरीका हलाल है। तो शैतान के पीछे और उसके कदमों के पीछे मत चलो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, बिला शुबा वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो कभी दीन की सूरत में बददीन बनाता है और दीनदारी की सूरत में बेदीन बना देता है। इसलिए उसको जो वाकई दुश्मन है, दुश्मन समझना चाहिए, और अल्लाह जो असल खालिक मालिक है, अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करना जरूरी है। आगे भी ऐसी आयतें आ रही हैं। यहां मुख्तसर ये है, बाज जानवरों को मुशरिकीन यूं करते थे, बाज जानवरों का दूध बुतों के नाम वक्फ कर देते और उनका खाना हराम समझते कि इन जानवरों का दूध बुतों के नाम वक्फ हो चुका है, अब इनको नहीं खा सकते। बाज जानवरों को आजाद छोड़ देते थे, उनसे किसी तरह का नफा नहीं उठाते थे, उनसे नफा उठाना हराम समझते थे। और बाज जानवरों को, मसलन जो ऊंटनी मुसलसल मादा बच्चे जने और नर बच्चे ना जने, उसको भी बुतों के नाम वक्फ कर देते थे, उसका खाना हराम समझते थे। कुरान ने सातवें पारे में इसका जिक्र किया है, मिम बहीरत्यू वला साइबत्यू वला वसीलत्यू वला हम। तो ये सब चीजें जो तुम हराम कर चुके हो असल में हलाल हैं, कोई हराम नहीं है। हलाल और हराम क्या है? हलाल वो है जो अल्लाह हलाल करार देते हैं, हराम वो है जो अल्लाह हराम करार देते हैं, या अल्लाह के नबी हलाल करार देते हैं या अल्लाह के नबी हराम करार देते हैं अल्लाह के हुक्म से। कुरान करीम में इसका जिक्र है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, नबी के فرائض اور ذمہ داریوں میں سے یہ ہے نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو نبی جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. بعض احکام تو قرآن کریم میں نازل ہوتے ہیں, بعض احکام اللہ کے رسول کے دل میں نازل کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول اپنی طرف سے ان کو بیان کرتے ہیں, نازل تو اللہ ہی کرتے ہیں. اب کون سی چیز حلال ہے جو پاکیزہ ہے, کون سی چیز حرام ہے جو خبیث ہے گندی ہے. اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان علماء کرام لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں گے. آپ کا ذوق جن چیزوں کو حلال کہتا تھا وہ چیزیں حلال ہیں, آپ کا ذوق جن چیزوں کو حرام قرار دیتا تھا وہ چیزیں حرام ہیں. اب خنزیر ہے حرام ہے, آپ کا ذوق اس کو حرام قرار دیتا تھا اور اللہ کی طرف سے بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایسے ہی جو درندے ہیں, کتا ہے بلی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب حرام ہیں. تو صاف فرما رہے ہیں شیطان کی پیروی نہ کرو, جو اللہ نے اللہ کے رسول نے بتایا اس پر عمل کرو. آگے اپنی طرف سے بہت سی باتیں گڑھ لینا اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کر کے چلا دینا بڑی بے دینی اور بد دینی کی بات ہے. مسلمانوں میں بھی اس کا رواج ہے, انبیاء کے ناموں پر, اولیاء کے ناموں پر, پیروں کے ناموں پر بہت سے جانور چھوڑ دیتے ہیں اور ویسے ہی چرتے پھرتے رہتے ہیں. علماء لکھتے ہیں صاف یہ حرام کام ہے, اگر اس کو جائز اور حلال سمجھ کر کریں گے تو شرک ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اب وہ مثلا گائے ہے یا کوئی بکری ہے, حلال ہے طیب ہے, اس کو پیر کے نام, ولی کے نام, نبی کے نام, کسی سالار اور شہید کے نام نیت کر لیں, منت مان لیں, نظر کر لیں. اب علماء کرام لکھتے ہیں وہ جانور بھی حرام ہو گیا, وہ نجس ہو گیا, اس کا گوشت کھانا حرام ہے, وہ بھی نہیں کھا سکتے جب تک کہ اللہ کے حضور سچی توبہ نہ کریں اور اپنے اس فعل سے جو انہوں نے حرام کر کے کبیرہ گناہ کیا ہے بلکہ شرک کیا ہے اس سے سچی توبہ کریں, پھر وہ جانور ان کے حق میں حلال ہوگا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے حرام کو حلال کرنے کا. اور اگر واقعی حلال کو حرام قرار دے لیں, غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دے تو وہ حرام ہی ہو جاتا ہے. اس کو حلال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سچی توبہ کر کے باضابطہ اللہ سے معافی مانگنے, ہم نے ایسا کیا تھا, ہم اپنے اس غلط عمل سے توبہ کرتے ہیں. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, شیطان تو تم کو حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا, اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ باتیں بتایا کرو جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے وہ باتیں نہیں بتائی لیکن اللہ کی طرف منسوب کر کے تم بتا رہے ہو. مقصد کیا ہوتا مشرکین کا؟ کہ چونکہ ان کے اعتقادات میں, ان کے خیالات میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بت وغیرہ, یہ مورتی کل سفارشی بنیں گے, کل قیامت کے دن یہ سفارشی بنیں گے, شفاعت کرنے والے ہوں گے, وہ بھی ان کو اصل خدا نہیں مانتے تھے. اب زمانہ گزرتے گزرتے جو لوگ ہیں وہ اصل خدا سمجھ رہے ہیں, ورنہ دور نبوت کے مشرکین ان کو اصل خدا نہیں سمجھتے تھے, سفارشی سمجھتے تھے. کہتے تھے ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ, یہ سب हमारे ये सब हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के यहां, तो ये बुतों के नाम पर छोड़ते थे तो इनका एतिकाद ये था कि इससे बुत खुश होंगे, जब खुश होंगे तो अल्लाह के यहां हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम बुतों के नाम पर नहीं छोड़ेंगे, उनका हद दर्जा एहतराम और ताजीम नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे और हमारी सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि हमारे लिए रुकावट बन जाएंगे, ये उनका ख्याल होता था। अब जाहिर सी बात है, ये सब बातें शैतान ही समझाता था, उनके दिलों में शैतान ही इन सब बातों को डालता था। तो शैतान बुराइयों का, बेहयाइयों का हुक्म करता है और झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब करने का हुक्म करता है। इसलिए कहते इन्नमा अमुरुकुम बिस्सुई वल फहशा, वो तो सिर्फ हुक्म देता है तुमको बुराई और बेहयाई का, और इस बात का कि तुम अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते वो झूठ लगाया करो, ये शैतान कहता है। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ, और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, इसलिए कि वही खालिक, वही मालिक, वही माबूद, और तुम जानते हो और इकरार भी करते हो अल्लाह ही को माबूद हकीकी होने का, तो जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है उसकी पैरवी करो। तो साफ कहते नहीं, हम तो हमारे आबाओ अजदाद को जिस तरीके पर पाए हैं उस तरीके की पैरवी करेंगे, हम तो उस तरीके पर चलेंगे, उसके अलावा और कोई हमारा तरीका नहीं होगा। और जब उनसे कहा जाता है पैरवी करो तुम उस हुक्म की जो अल्लाह ने नाजिल किया है, उस कुरान की, वो कहते हैं नहीं, हरगिज नहीं, हम तो पैरवी करेंगे उस तरीके की, ताबेदारी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है, वही हमारा असल तरीका है। नऊज़ु बिल्लाह। अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलून शैउं वला यहतदून, क्या भला उस वक्त भी पैरवी करेंगे अपने बाप दादों की जब वो कुछ समझ ना रखते थे और हिदायत हासिल नहीं थी। जब भी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं अवलौ काना, भला बताएं क्या उनके आबाओ अजदाद किसी चीज को समझते ही नहीं थे और किसी सीधी राह पर कायम ही नहीं थे, जब भी वह उनके आबाओ अजदाद की पैरवी करेंगे। जाहिर सी बात है, इसको दुनिया भी नामाकूल और हिमाकत कहती है। दुनिया के अंदर भी जो पैरवी की जाती, आदमी अकल को इस्तेमाल करता है, समझता है कि कौन नफा देने वाला है, कौन नुकसान देने वाला है, नफा और नुकसान का पहलू कहां है उसको सामने रखता है। तो वो कुछ भी अकल नहीं रखते थे, समझ नहीं रखते थे और हिदायत पर भी नहीं थे। तो जब भी अपने बाप दादों की पैरवी करेंगे, जाहिर सी बात है दुनिया उसको जहालत कहेगी, तो यहां उनको जाहिल ही कहेंगे। ये अंधी तकलीद है जो हराम है, और एक वो तकलीद है जो अइम्मा इकराम की जाती है, चारों अइम्मा इकराम की जो की जाती है वो अंधी तकलीद नहीं है, बल्कि वो सही और मुस्तहसन, मुस्तहब और बल्कि वाजिब तकलीद है। इसलिए कि अंबिया कर अइम्मा कराम की जो तकलीद होती है वो इस बात पर होती है कि कुरान और सुन्नत से हम बराह रास मसाइल नहीं निकाल सकते हैं, हमारे अंदर वो इस्तितात नहीं है, हमारे अंदर वो इज्तिहाद की कुव्वत नहीं है जो उनके अंदर थी। अब वो जो कुरान और हदीस से, सुन्नत से मसाइल निकाल कर बताते हैं, उन मसाइल पर हम चलते हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम आजम और इमाम अहमद इबन हम्बल अलैहिम रहमा, ये तो ये चार अइम्मा, वरना तो 400 अइम्मा इकराम थे, लेकिन उनका मजहब चला नहीं, उनके शागिर्द आगे बढ़े नहीं। अब जिनके शागिर्द आगे बढ़े, जिनकी किताबें जमा हो गई, तदवीन उनकी हो गई, वो चार ही अइम्मा इकराम है। इसलिए तमाम उम्मत ने इत्तिफाक किया कि अब चार अइम्मा में से किसी एक की तकलीद होगी। तो समझ रखते थे, हिदायत पर थे, तो दो बातें होती हैं। उनको अक्ल थी, समझ थी, तो समझ से कुरान से सुन्नत से मसाइल निकाले, और समझ वैसी नहीं थी तो सीधी राह पर चलने वालों की उंगली पकड़े। जो सीधी राह चलते हैं उनकी उंगली पकड़े, वो सीधी राह चलाएंगे। तो ये दुनिया का जाब्ता है, और इसको समझना हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया में समझिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, इन्नी तरक्त मिल्लत कौमिल ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति काफिरून। मैंने उस कौम की मिल्लत और उसका मजहब छोड़ दिया जो कुफ्र करते हैं, जो काफिर है। इन्नी तरक्त मिल्लत कौमिल ला युमिनून बिल्लाह व बिल आखिरति हुम काफिरून, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं और आखिरत को नहीं मानते हैं। लेकिन आगे कहते हैं, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और मैंने अपने आबा का इत्तिबा किया है, अपने बाप दादों का। कौन? इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। साफ कह रहे हैं, तो इनके आबा हक पर थे, उन्होंने सही मजहब सही मिल्लत दिखाई। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम उनका जिक्र कर रहे हैं, और जिनके आबा हक पर नहीं थे जैसे मुशरिकीन, वो बातिल तकलीद है, और ये जायज और हक तकलीद है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बहकाने वाले इस आयत से बहकाते हैं, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ, और मिसाल उन काफिरों की जैसे मिसाल है उस शख्स की, यन्इकु बिमा ला इस्मउ इल्ला दुआउ व निदा, जो चीख कर पुकारता है उसको, जो सिर्फ पुकारने और चिल्लाने को सुनता है। कितनी प्यारी मिसाल अल्लाह दे रहे हैं कि काफिर जो हो गए हैं उनकी मिसाल कैसी है। उनकी मिसाल यूं है जैसे एक शख्स चीख कर पुकार कर जानवरों को बुला रहा है। अब जानवर चीखना पुकारना तो समझते हैं, मजमून नहीं समझते। क्या मजमून कह रहा है, क्या बात वो कह रहा है, उसकी तकरीर क्या है, कोई बात जानवर नहीं समझते। बस चीखने चिल्लाने को सुनते हैं और अपने काम पर लगे रहते हैं। तो जो काफिर और मुशरिक हैं वो हिदायत की बातों को वैसे ही सुनते हैं जैसे जानवर चीखने और पुकारने को सुनते हैं। बस चीखना और पुकारना ही उनकी समझ में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह हिफाजत करे। और मिसाल उन काफिरों की जैसे मिसाल है उस शख्स की जो किसी चीज को या किसी जानवर को चीख कर पुकारता है, बुलाता है, जो सुनता नहीं है मगर बुलाने और चीखने को, पुकारने ही को सुनता है, आगे कुछ नहीं जानता कि क्या कहना चाहता है। सुम्मुम बुखमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, वो समझ नहीं रखते हैं। अल्लाह ने किस तरह से जलाल और गजब में ये बात कही है, कह रहे हैं बहरे हैं, हक बात सुनते नहीं। बुखमुन, गूंगे हैं, हक बात बोलते नहीं। उम्युन, अंधे हैं, हक बात देखते नहीं, समझते नहीं है कौन सा हक है कौन सा बातिल है, आंखों से देखकर भी फैसला नहीं करते। फहुम ला याकिलून, बस वो समझ नहीं रखते हैं। हवास, इन्हीं जाहिरी एतिबार से जिनसे इंसान को महसूस होता है, जिनसे इंसान को महसूस होता है, वो उमूमन तीन है, कानों से सुनकर, जुबान से बोलकर, आंखों से देखकर। इसके अलावा भी दो हैं लेकिन उमूमन तीन इस्तेमाल में आते हैं। अब ये तीनों उसके पास नहीं है, और इस पर सोने पे सुहागा ये है कि उनके पास अक्ल भी नहीं है, अक्ल भी खत्म हो गई है। अब भला बताएं उनको हम समझाएं कैसे, वो कैसे समझेंगे, उनको समझाएंगे कैसे, समझने की कोई सूरत नहीं रही, सब खत्म हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमा रहे ऐ ईमान वालो तुम खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुमको दी हैं। यानी हमने मुशरिकीन को, काफिरों को नसीहत की, लेकिन वो नसीहत सुनने और मानने तैयार नहीं, कबूल करने तैयार नहीं, छोड़ो उनको। अब हम तुमको हुक्म दे रहे हैं, तुम रग़बत के कानों से सुनो और दिल के कानों से सुनकर अमल करो। अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों को हराम करार नहीं दिया, तुम उनको हराम ना करार दो, वो हलाल है। अल्लाह का नाम लो और ज़बह करो, वो जानवर हलाल है, वो जानवर हलाल है, अल्लाह का नाम लेना बाकी है। हाँ, अगर तुम खुद हराम कर लोगे, जैसे किसी वली के नाम पर, किसी नबी के नाम पर वगैरह वगैरह तुम मन्नत मानकर हराम कर लोगे, अब उसका तरीका यह है कि अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो, तुमने शिर्क किया है या तुमने हराम काम किया है, सच्ची तौबा करो और गुनाह से बाज आओ, तौबा करो, फिर अल्लाह का नाम ले लो, वो जानवर हलाल हो जाएगा। ऐ ईमान वालो तुम खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुमको बतौर रिस्क दी हैं, रोजी के तौर पर हमने तुमको अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वश्कुरु लिल्लाह, हाथ पांव से, हर अज़ू से शुक्र होगा, ये आज़ा का शुक्र होगा। जैसे नमाज पढ़ते हैं तो हमारे आज़ा इस्तेमाल में आते हैं, और दिल से शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत दी है, दिल से शुक्र अदा करो और सभी आज़ा से शुक्र अदा करो, और खास तौर पर जुबान से भी शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जो कुरान करीम दिया है उसको कबूलियत के तौर पर पढ़ो, मान कर पढ़ो और अमल करके पढ़ो, और अमल की नीयत से पढ़ो, ये शुक्र की हकीकत है। ऐ ईमान वालो खाओ तुम उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुमको बतौर रोजी दी हैं, और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी के बंदे हो, सिर्फ उसी की बंदगी करते हो, उसी के बंदे हो, तो शुक्र भी अल्लाह ही का करो, उसी की फरमाबरदारी इख्तियार करो। अल्लाह मलिक।